हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बारिश की बौछारों से भीगती उस सड़क पर अर्णव की कार धीमी रफ्तार से लगभग रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी और बेचैन निगाहें सड़क की दोनों ओर दौड़ते हुए धृति को ढूंढने की कोशिश में लगी थीं। धृति ऑफिस से निकल तो गई थी, पर काली घटाओं ने उसे कुछ यूं घेरा कि चाहकर भी ज्यादा दूर ना जा सकी, और कुछ ही मिनटों में उसका पूरा वजूद उनकी चपेट में आकर आकाश से बरसती उन ठंडी बूंदों से सराबोर हो गया। ऐसे में आगे जाना बेहद मुश्किल था, सो वो ऑफिस से 5-7 मिनट की दूरी पर बनी दुकान के शेल्टर के नीचे आकर खड़ी हो गई। भीगे बालों को घोलकर अपने कंधों और पीठ पर फैलाया, दुपट्टे के छोर से चेहरे पर बिखरी बूंदों को समेटा और अपने भीगे कपड़ों को झाड़ने लगी जो भीगकर उसके बदन से चिपक गए थे। अर्णव की कार उससे चंद कदमों की दूरी पर ही थी जब शेल्टर के नीचे ठंड से कांपती, खुद में सिमटकर खड़ी धृति पर उसकी नज़र पड़ी और उसने तुरंत ही कार की स्पीड बढ़ा दी। अगले ही पल कार धृति के सामने जाकर रुकी। धृति ने आवाज सुनकर चौंकते हुए निकाहें उठाईं और नजरें सीधे अर्णव की उन गहरी काली स्याह नजरों से टकराईं जिनमें दुनिया भर की चिंता, फिक्र और मोहब्बत लिए वो उसे ही देख रहा था। किसने कहा था तुम्हें इतनी बारिश में अकेले निकलने को? ना चाहते हुए भी नाराजगी अर्णव के अल्फाजों में घुल गई। पूरे हक से डांटा था उसने, परेशान भी तो बहुत हुआ था उसके कारण, सो उसका गुस्सा, नाराजगी सब जायज था। पल भर को धृति उसे देखती ही रह गई, फिर उसने बिना जवाब दिए उस पर से निगाहें फेर लीं। अर्णव ने बेबसी और अफसोस से अपनी आंखों को भींच लिया। वो तो भूल ही गया था कि अब उसे उस पर नाराज तक होने का हक नहीं। दर्द भरी आह उसके दिल से निकली, पर स्थिति देखते हुए उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। आओ बैठो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। जी नहीं, मैं खुद से चली जाऊंगी, धृति ने निगाहें फेरे हुए ही रूखे अंदाज में साफ इनकार कर दिया। उसकी जिद पर गुस्सा तो बहुत आया अर्णव को। ये लड़की जो पहले उसकी हर बात मानती थी, अब तो जैसे कसम खाए बैठी है कि उसकी सही गलत हर बात के खिलाफ ही जाएगी। अर्णव ने अपने गुस्से को दबाया और गंभीर स्वर में बोला, बेकार की जिद मत करो धृति, दोपहर से लगातार बारिश हो रही है जिसके रुकने के कोई आसार नहीं। यातायात के साधन भी ठप पड़े हैं और रास्तों का हाल तो तुम खुद ही देख रही हो, चंद मिनटों में तुम खुद पूरी भीग गई हो। कब तक बारिश में यहाँ खड़ी होकर इंतजार करती रहोगी? अंधेरा भी होने लगा है। अपनी हालत देखो, मामले की गंभीरता को समझो, अपनी सेफ्टी का ही ख्याल कर लो। आओ बैठो, अंदर छोड़ देता हूँ तुम्हें। अर्णव ने उसे हर पहलू से रूबरू करवाया। धृति कुछ पल खामोश खड़ी सोचती रही, फिर जब अर्णव ने दूसरे तरफ का दरवाज़ा खोल दिया तो कातर निगाहों से अर्णव को देखने लगी। उसकी उलझन और कश्मकश समझते हुए अर्णव ने संजीदगी से आगे कहा, चिंता मत करो, इन हालातों में तुम्हारे साथ अकेले होने का फ़ायदा उठाकर कुछ गलत नहीं करूंगा तुम्हारे साथ, अपनी लिमिट्स जानता हूँ, सेफ रहोगी मेरे साथ। अर्णव का ये कहना था कि धृति के कान जल उठे, चेहरे पर गुलाबी रंगत बिखर गई और वो झेंपते हुए अंदर बैठ गई। अर्णव के लब हल्के से खिंच गए और दिल में उम्मीद की एक किरण जल उठी। ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा आपने कहा, धृति ने रुख फेर कर बैठते हुए हिचकिचाते हुए धीमे स्वर में कहा, जैसे कुछ जता रही हो उसे। अर्णव कार स्टार्ट करने जा रहा था, धृति की बात सुनकर उसने चौंकते हुए सर घुमाकर उसे देखा और भौं उचकाते हुए सवाल किया, अच्छा तो और कैसी बात थी, क्यों ये जानते हुए कि इन परिस्थितियों में मेरे साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास, बार बार इनकार कर रही थी, कतरा क्यों रही थी बैठने में? धृति जो उससे रुख फेरे बैठी थी, उसने अब निगाहें अर्णव की ओर घुमाई और नजरों से नजरें मिलाते हुए बोली, कोई खास वजह नहीं थी, बस आपका एहसान नहीं लेना चाहती थी मैं। एहसान? सीरियसली? बीवी हो तुम मेरी और मेरा तुम्हारे लिए कुछ करना एहसान लगता है तुम्हें? अर्णव चेहरे पर सख्त भाव लिए भौहें सिकोड़े उसे घूरने लगा, जबकि धृति उससे नजरें चुराते हुए चुप्पी साध गई और अपने दुपट्टे को शॉल जैसे खुद पर लपेटने लगी। अर्णव ने एक हल्की नज़र उसके भीगे हुए वजूद पर डाली, फिर पीछे रखा अपना ओवरकोट उठाकर उसकी ओर बढ़ा दिया, लो इसे पहन लो, बेहतर महसूस करोगी और प्लीज अब कोई बेकार की जिद या बहस करने मत बैठ जाना, इस स्थिति में नहीं हूँ अभी तुम। अर्णव ने चेताते हुए उसका ध्यान उसकी हालत की ओर खींचा, जिसके बाद धृति ने बिना कोई बहस किए सर झुकाते हुए उससे ओवरकोट लेकर पहन लिया। थैंक यू, मैं कल परसों तक आपको ड्राई क्लीन करवा कर वापस कर दूंगी। अर्णव ने सर हिलाया और कार स्टार्ट कर दी। धृति, अब तो हम ऑफिस में नहीं तो कुछ पर्सनल बात कर सकते हैं? कुछ देर की खामोशी के बाद अर्णव ने कार ड्राइव करते हुए बात शुरू की। धृति, जो अपने बिखरे बालों को समेट रही थी, अर्णव की बात सुनकर उसने सर उसकी ओर घुमाया। कहिए, कुश किसका बेटा है? अर्णव ने निगाहें धृति की ओर घुमाते हुए गंभीरता से सवाल किया, पर सवाल सुनते ही धृति के चेहरे के कोमल भाव सख्त हो गए। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो मेरा बेटा है, और ये सच नहीं, ये मैं भी जानता हूँ और तुम भी, इसलिए झूठ कहकर मुझे बहलाना बंद करो। मैं सच जानना चाहता हूँ, कुश किसका बेटा है और तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? अर्णव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए उससे हकीकत जानने की कोशिश की, पर धृति अपनी बात पर अड़ी रही। आप माने या ना माने, पर मैं कुश की माँ हूँ और यही सच्चाई है। अच्छा, तो उसका बाप कौन है? अर्णव ने गुस्से भरी निगाहों से उसे घूरते हुए भौं उचकाई। धृति ने भी उसकी निगाहों से निगाहें मिलाते हुए बिना घबराए दृढ़ता से जवाब दिया, मृणाल। और तुम्हारा मृणाल से क्या रिश्ता है? मैं इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती, धृति ने चेहरा फेरते हुए जवाब दिया। अर्णव उसके इस तरह के जिद्दी व्यवहार से बुरी तरह खींच उठा। आज भी उतनी ही जिद्दी हो तुम, सच अब भी बताने को तैयार नहीं? धृति चुप रही। अर्णव ने स्टीयरिंग घुमाते हुए सॉफ्ट लहजे में अगला सवाल किया, क्या कुश वो वजह है जिसके कारण तुम मेरे साथ वापस जाने को तैयार नहीं? हो सकता है, पर मेन रीजन आप खुद हैं। मैं आपके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, तो वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम क्यों मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती? वजह से आप बखूबी वाकिफ हैं। धृति भी पल भर उसे देखा, फिर वापस निगाहें फेर ली। अर्णव के चेहरे पर निराशा और मायूसी के भाव उभर आए। धृति, उन गुनाहों की सजा भुगत चुका हूँ मैं। 3 साल तुमसे दूर रहा हूँ। बीते 3 सालों में एक पल चैन से नहीं गुजरा मेरा। एक लम्हा ऐसा नहीं गया जब तुम्हारी याद में तड़पा नहीं मैं। क्या बीते 3 साल काफी नहीं थे जो अब भी तुम अपनी बेरुखी से मुझे तकलीफ पहुंचा रही हो, ये जानते हुए कि मैं बेइंतहा बेपनाह मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मेरी हर खुशी तुमसे है, मुझे इंतजार है तुम्हारा। तुम मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। धृति अर्णव का कन्फेशन सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराई, फिर व्यंग्य भरे लहजे में बोली, गलत क्या कर रही हूँ मैं? जो आपने दिया वही लौटाया है मैंने आपको। कब तक ऐसा चलेगा धृति? तुम्हारी दी सजा मैंने खामोशी से काटी है, अब जब किस्मत ने हमें दोबारा मिलवाया है तो क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? अर्णव बड़ी ही उम्मीद से उसे देखने लगा, पर धृति ने पल भर में उसकी सारी उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। नहीं कर सकती, और ये मैं आपको बहुत पहले बता चुकी हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, माफ़ी भी नहीं। इसलिए अगर आप इस उम्मीद से यहाँ हैं कि मैं आपको माफ़ कर दूंगी, तो लौट जाइए वापस, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। टू बी कंटिन्यूड।